रात्रि क्लास चल रहा था 21/9/1967। पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी, किसकी बात चल रही थी, वैष्णव पंथियों की बात चल रही थी। वो अपन को कहते हैं हम वैष्णव हैं। अरे पक्के वैष्णव तो देवी देवताएं थे सतयुग में, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। त्रेता में भी सैमी देवताएं थे, वो भी वैष्णव थे। क्यों, क्या बताया, शास्त्रों में जो नाम है ना, देवी देवता अर्थ है ना, देवी माने देने वाली, लेने वाली नहीं। हाँ क्या, दुनिया के मजे लेने वाली, तो फिर क्या हुई है, चल छोड़ दो। हाँ देना बैंक है वो, तो नाम की देना बैंक है। असली बैंक तो ब्राह्मणों की दुनिया में बनेगी है। ये तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट, उनकी बैंक कैसी होगी, उनके अंडर में चलने वाली, वो बैंक भी तो भ्रष्टाचारी होंगी ना। नाम दे दिया जैसे इन वेजिटेरियंस ने नाम दे दिया, पक्के वैष्णव हम हैं। लड्डू वैष्णव किसे कहा जाता है, विष्णु की संतान। क्या ब्राह्मण किसे कहा जाता है, ब्रह्मा की संतान। एक मात्रा बढ़ती है ना फॉलोअर में, बच्चे के अर्थ में। तो देखो अभी इस दुनिया में कहेंगे वैष्णव तो कोई भी नहीं है, हैं? नहीं है? क्योंकि वो तो वेजिटेरियन की बात इसमें नहीं है, किसमें, देवी देवता सनातन धर्म में, जो भगवान ने आकर के देवी देवता बनाए थे। क्या बनाए थे, नर अर्जुन को नारायण जैसा बनाया था ना, नारी लक्ष्मी को, वो नारी द्रौपदी को क्या बनाया था, लक्ष्मी जैसा, नारायणी जैसा बनाया था ना। तो इन देवताओं में जो पक्के वैष्णव थे, जिन्हें भगवान ने बनाया था, उनमें ये वेजिटेरियन की बात इसमें नहीं है। क्या, क्यों, क्योंकि वेजिटेरियन में तो वो प्याज वगैरह भी खा जाते हैं, खा जाते हैं। नाम क्या रखा, पी आज, अरे आज पी लो, फिर जब आएगा तब देखा जाएगा। क्या कहा, होता है कि नहीं, हाँ। तो वेजिटेरियन में प्याज वगैरह खा जाते हैं, एक हद के वेजिटेरियन और एक बेहद के वेजिटेरियन। हाँ सिर्फ मांस मदिरा शायद थोड़ी बहुत हो, मांस मदिरा भी होगी। अरे हद के वैष्णव में कहते हैं वैष्णव, कभी कभी जैसे ब्राह्मण होते हैं ना आज की दुनिया, तो मांस मदिरा खा लेते हैं नहीं, हाँ। तो ऐसे ही वो मांस मदिरा भी होगी शायद, पता नहीं, बाबा ने देखी नहीं है, अनुमान लगाए दिया के मांस भी खाते होंगे। क्या मांस, जानते हैं किसे कहते हैं, बेहद में मांस क्या होता है, बेहद में मांस होता है देह अभिमान को सुख लेना, देह का इंद्रियों का सुख लेना, उसको क्या कहेंगे, मांस। तो मांस मदिरा भी होगी, हाँ। ये मच्छी वगैरह ये सभी नहीं खाते होंगे। क्या है, मच्छी वगैरह खाते होंगे, नहीं खाते होंगे, बाबा ने अनुमान लगाया कि मच्छी वगैरह नहीं खाते होंगे। क्यों, मच्छी में क्या खास बात होती है,
अरे बदबू आती है ना, नहीं आती
है? बदबू आती है बेचारी की,
वो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती, खा जाती कि नहीं?
हाँ।
तो बस ये जो शायद वो वैष्णव लोग वो हद की मछलियां नहीं खाते होंगे। हाँ बेहद की तो बेहद के खाते होंगे कि नहीं?
हाँ जरूर खाते होंगे,
कोई फर्स्ट क्लास होंगे तो नहीं खाते होंगे। तो जो प्याज खा जाते हैं मांस मजरा भी होगी शायद, मच्छी नहीं खाते होंगे, उनको वेजिटेरियन कहा जाता है या वैष्णव कहा जाता है?
कहा जाना बात अलग और प्रैक्टिकल में होना बात अलग।
तो उन वेजिटेरियंस की कॉन्फ्रेंस होती है, क्या क्या करते हैं वो कान में फर्र करके बात डालते हैं, कोई दूसरा ना सुने, जैसे गुरुजी महाराज होते हैं ना, हद के गुरु भी होते हैं बेहद के गुरु भी होते हैं, होते हैं नहीं? हाँ होते हैं, माता जी को पता है। हाँ तो जो बेहद के गुरु होते हैं वो कहें किसी को बताना नहीं, कान में मंत्र फूंक देते हैं, उसको कहते हैं कान फुर्रंस, क्योंकि वो लोग जानेंगे जो वैष्णव नहीं है, है? जो वैष्णव नहीं है और वो तो खूब मांस मदिरा मच्छी खाते हैं भारत में ही है ना, हाँ तो वो सुनेंगे तो वो तो नाराज हो जाएंगे, हाँ तो इसलिए कान में फुर्रंस कर देते हैं। कॉन्फ्रेंस होती है तो उनको ये समझाना है जा करके कि वैष्णव हैं वो जो पैराडाइज में रहते हैं।
क्या
पैराडाइज तो जानते हो ना, तुम तो अंग्रेज आदमी हो है, तुम्हारा ही अक्षर शब्द है पैराडाइज, नहीं तो मुसलमानों को समझाना हो तो उनका शब्द क्या है? जन्नत। तो वेजिटेरियनों को उनको कहा जाता है किनको, जो है किनको अभी बताया ना, जो सत्युग में त्रेता में दुनिया की आधी दुनिया स्वर्ग होती है और आधी दुनिया नरक राक्षसों की, देवताएं हैं अद्वैतवादी माने एक को मानने वाले, आ माने नहीं, द्वैत माने दूसरे को नहीं मानते, और जो राक्षसी दुनिया में नरक की दुनिया में है, आज से 2500 वर्ष पहले से इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए, इन्होंने ये जो नरक की दुनिया बनाई, क्योंकि नर है ना मनुष्य है ना, तो उस दुनिया में ये जो वैष्णव होते हैं वो अपन को वैष्णव कहते हैं, वास्तव में होते नहीं है। क्यों? कारण बताया क्यों नहीं होते हैं? क्यों तो हो, क्योंकि वो देवी देवताओं जैसे तो होते ही नहीं, देवी देवताएं कोई मांस मदिरा खाते हैं क्या? नहीं, भारत में कहीं मिले जाओ मंदिरों में देवी देवताओं के मंदिरों में, वो थर्ड क्लास फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास नाइन्थ क्लास वो महाकाली की बात नहीं करना, हाँ तो थर्ड क्लास जो ब्राह्मण बनते हैं ना शूटिंग पीरियड की संगम की दुनिया में, वो जाकर के वो मांस मदिरा खाते हैं, आओ भैया हमारे पास मांस बहुत है, मछली है हम मत्स्यावतार, क्या हाँ तो खूब खाओ। तो डरती है ना मछली, पहले तो डरती थी जब छोटी थी तो बहुत डरती थी, क्या काई बात से है? हाँ छोटी छोटी मछलियां होती है ना समंदर, बंगाल वाले बहुत खाते हैं, उन्हें मालूम है कि छोटी छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं, तो वो मत्स्य अवतार को डर रहता है क्या है कि हमको कोई खा जाएगा, है ना? तो जो शास्त्रकारों ने मत्स्यावतार दिखाया है ना, उसमें वो मत्स्यावतार जिस राजा ने अपने बुद्ध रूपी कमंडल में रखा ना, उसके कमंडल में पहुंच गई, अंजलि में लिया, देखा कि वो छोटी सी मछली है, तो उन्होंने कहा हमें बचा लो, है उन्होंने अपने कमंडल में बुद्ध रूपी कमंडल में डाल लिया। तो मछली कहती है कि अब ठीक है कमंडल में डाल दिया, अब तो मैं जल्दी जल्दी, अभी तक तो मुझे डर लग रहा था क्या हाँ मछलियां कोई बड़ी वाली खा जाएंगी, लेकिन अब तो मैं आपकी सुरक्षा में आ गई हूँ, आपका तो नाम ही है सत्यव्रत जी महाराज। क्या नाम है? सत्य का व्रत लेने वाले महाराज, जैसे शरी सत्य हरिश्चंद्र थे। फिर हाँ तो आप तो वही सत्य हरिश्चंद्र की जन्म लेने वाली आत्मा है, सत्युग में सत्य हरिश्चंद्र थे, अब जन्म लेते 84 के चक्कर में, अब आकर के सत्यव्रत महाराज बने, जहाँ बंगाल में मछलियां बहुत खाते हैं और बहुत समंदर में से पकड़ते हैं, नदी गंगा जल में गंगा जी में से पकड़ते हैं। तो मुझे बहुत डर लगता है क्या कि जो या तो बड़े बड़े मगरमच्छ खा जाएंगे और उनसे भी बच गई तो ये बंगाली जो है ना ये तो बहुत मछलियां खाते हैं, ये खा जाएंगे। तो वो उसने कहा किसने मत्स्यावतार ने कहा हमें ये खा जाएंगे, आप हमें कमंडल में ले चलो, बढ़ूंगी तो मैं जल्दी जल्दी। तो वो बढ़ गई, तो उन्होंने बड़े मटके में डाला, उसमें भी तो बढ़ गई। तो फिर उन्होंने ले जा करके एक बड़े हौदे में बनाया, जहाँ दिल्ली में सीलमपुर था ना, तो वहां मछलियों की बीज बोया गया था, बड़े बड़े तालाब बनाए गए थे क्या हाँ वहां कोई बीज रूप मछलियां भी होगी होगी ना हाँ। तो पहले बनाए थे, अभी तो वो बिगाड़ दिए हैं, ये गवर्नमेंट है, रोज रोज बातें बदलती रहती हैं। तो वो मछली बहुत डरती थी कि मेरे को खा जाएंगे। अब ये समझने की बात है क्या कि ज्यादा मांस किस में होता है, कौन से जानवर में बहुत मांस होता है? मछली में मांस बहुत होता है, छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली, व्हेल मछली हो है और सील मछली हो, हड्डी बहुत थोड़ी है ना, थोड़ी सी हड्डी। तो जो मांस खो रहे हैं वो बहुत खाते हैं है? हद के मांस खोर वो तो ये वैष्णव आज की दुनिया के हो गए, और बेहद के मांस खोर भगवान जब आते हैं संगम युग में, तो जिन बीज रूप आत्माओं को पैदा करते हैं ना, रुद्र माला के मन के कहे जाते हैं बीज, रुद्र की माला है ना, माला माने संगठन, तो उस संगठन में जितने भी बीज है सब मांस खोर, बेहद का मांस जानते तो ना, समझा कि नहीं हाँ। चलो कभी तन से नहीं खाते होंगे, इंद्रियों से नहीं खाते होंगे, मन में तो खाते ही रहते, दृष्टि से खाते रहते, खाते कि नहीं हाँ। तो कहेंगे उनको वेजिटेरियन कहेंगे ना, हद वालों को कहेंगे ना बेहद वालों को कहेंगे। अरे वैष्णव तो कहा जाता है देवी देवताओं को, तो जो आज अपन को वैष्णव कहते हैं, जिनको वैष्णव कहा जाता, दुनिया भी कहती है वैष्णव है, वेजिटेरियन खाते हैं, तो उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, तो उनको ये समझाना है, किनको? हद वालों को पहले समझाना है कि बेहद वालों को? किसों को समझाना? बेहद वालों को, बेहद वालों को समझाना है, जाकर के समझाएंगे कि वैष्णव हैं जो सच्चे सच्चे, वो तो पैराडाइज में रहते हैं।
कहाँ रहते हैं?
पैराडाइज।
पैराडाइज शब्द क्यों बोला? समझाने के लिए।
अगर एक होगा ना तो पैराडाइज जल्दी समझेगा।
हाँ तो
बताया, तुम तो क्रिश्चियन हो है, इसलिए हम तुम्हारी भाषा थोड़ा थोड़ा हम भी भाषा जानते हैं तुम्हारी। तो पैराडाइज में ये रहते हैं
कौन?
सच्चे पक्के वैष्णव।
तो पक्का बनना है वैष्णव कि कच्चा वैष्णव बनना है? क्या बनना है?
पक्का वैष्णव। और वो हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले।
क्या देवी देवता शब्द क्यों लगा दिया?
अरे सनातन धर्म तो आज हमने सुना बहुत, देवी देवता सनातन धर्म, ये क्या बात हो गई?
अरे अभी तो बताया, भगवान आते हैं तो नर अर्जुन और नारी द्रौपदी को क्या बनाते हैं?
सतयुग का नर से नारायण बनाते हैं। देवी देवताएं थे ना, नारायण और नारायणी।
तो कौन सा धर्म स्थापन किया भगवान ने?
तो उन्हें भगवान को कहते हो हेवनली गॉड फादर।
तो हेवनली गॉड फादर ने जरूर हेवन स्थापन किया होगा ना?
हाँ देवी देवता धर्म स्थापन, हिंदू हम कहते हैं देवी देवता धर्म, आप लोग कहते हैं डीटी है ना?
हाँ
तो देवी देवता धर्म वाले जो थे वो ही सच्चे कहे जाएंगे। सनातन, सनातन माने पुराने, पुराने जमाने की बात है देवी देवताओं की, जो सतयुग में ही थे सच्चे सच्चे। त्रेता में भी उनकी कलाएं कम हो जाती है।
क्या ज्ञान की रोशनी कम हो जाती कि नहीं? जैसे चंद्रमा में 16 कला संपूर्ण, फिर धीरे धीरे उतरते उतरते है एकदम अंधेरे
अंधेरे। तो ऐसे ही ये जो इस दुनिया में जन्म लेने वाली आत्माएं हैं ना, भगवान ने देवी देवता की दुनिया बनाई थी हेवन में, हेवनली गॉड फादर ने। और वो देवताएं जन्म बाई जन्म नीचे उतरते उतरते,
सीढ़ी नीचे उतरते गए।
हाँ तो उनकी कलाएं कम होती गई, बुद्धि में से जो असली ज्ञान है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ वो निकलता गया। और द्वापर युग में आते आते द्वैतवादी युग में जब से ये विधर्मी धर्म पिताओं के संग के रंग में आए ना, तो बस सब भूल गए कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, है ज्योति बिंदु आत्मा है। तो भूल गए तो फिर सब तो नहीं भूले, क्योंकि ऋषि मुनि थोड़ा शास्त्रों में उन्होंने को सच्चाई लिखी थी साक्षात्कारों में कर करके, तो उन शास्त्रों के प्रभाव से वो माताएं थोड़ी ज्यादा भावशाली होती हैं, तो उन्होंने आत्मा तो याद नहीं क्या किया, बिंदी लगाना शुरू की।
क्या?
हाँ। और जो राजघराने होते थे उन्होंने फिर टीका लगाना शुरू किया
बड़ा वाला, कि मैं छोटी बिंदी नहीं बनूंगा, मैं तो बड़ी बिंदी बनूंगा,
मैं बड़ी आत्मा हूं। तो अपना बड़प्पन दिखाने के लिए टीका लगाया।
काहे के लिए बड़प्पन?
अरे रानियां बनती हैं, वो तो रानियों को फॉलो करने वाली भी अपने अपने घर में रहती है। अरे हम तो बाहर निकल करके बड़े बड़े युद्ध करते हैं, है? तो हमारी पूजा करो ना युद्ध में जाते समय, तो हमको टीका लगा, हम बिंदी बिंदी नहीं लगाएंगे।
या
हाँ। तो टीका लगाने की प्रथा राजाओं में राज परिवार में शुरू हुई, तो फिर प्रजा ने भी क्या किया?
प्रजा वाले तो पैदलिया बनते हैं।
क्या?
लंका जो योद्धा होते हैं ना वो पैदलिया होते हैं ना,
तो फिर उन्होंने क्या किया?
हाँ
उन्होंने भी टीका लगाना शुरू कर दिया। तो वो यादगार है क्या? यादगार है, अभी भी चल रही है यादगार। पुरुषों को तो देखो बताए दिया है।
क्या?
ब्रह्मा बाबा के मुख से, ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकलती है ना भगवान की, तो उन्होंने बताए दिया। क्या
पुरुष तो सब आज की दुनिया में क्या हो गए? दुर्योधन, दुशासन, दुष्ट युद्ध करने वाले।
क्या?
शादी करके तो कन्या को घर में ले जाएंगे,
तो कन्या बिचारी कहेगी ना 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 ना,
वो नहीं मानेंगे।
वो तो झगड़ा तंटा कर देंगे, हाथ पांव चला देंगे, मार मूर करेंगे, पकड़ लेंगे, हाथ पांव बांध देंगे और फिर अपना युद्ध करेंगे। तो वो जो सचगुण में थे वो तो ऐसे काम नहीं करते,
करते थे।
ये तो ये जो धर्म पिताएं आए द्वैतवादी द्वापर युग से, इन्होंने हिंसा का धर्म सिखाया है।
क्या मालूम है ना, आज से 2500 वर्ष पहले की ही बात है, चंद्रगुप्त राजा था ना, तो वो राजा कैसे बना है?
चाणक्य ने उसको राजा बनाया, ब्राह्मण था। तो उस समय विदेश से कोई आक्रमणकारी लाखों की तादाद में सेना लेकर के आया, ये मुसलमान होते हैं ना, मुसलमान तो बहुत पैदाइश करते हैं बच्चों की, करते कि नहीं, बहुत पैदाइश करते हैं।
तो उनकी सेना जल्दी जल्दी बढ़ेगी कि घटेगी?
भारतवासी तो ब्रह्मचर्य को बहुत मान देते हैं और कन्याओं माताओं की तो बहुत सुरक्षा करते हैं, ब्रह्मचारी रहे, व्यभिचारिणी न बन जाए, वर्णशंकर न बन जाए। तो ढेर सारी उनकी सेना उनकी तैयार हो गई,
100-200-500 वर्ष नहीं,
ढेर सारी सेना तैयार हो गई और उन्होंने आकर के भारत पर और खूब खून खार खून रेजी की। जानवर बुद्धि हुए ना, क्या हुए, बुद्धि कैसी बन गई उनकी? तो वो धर्म पिताएं जो विधर्मी धर्म पिताएं आते हैं विदेशी, क्या कहेंगे इब्राहिम बुद्ध को, क्या कहेंगे विदेशी? आप चलो बुद्ध भारत के थे लेकिन उन्होंने अपनी भाषणबाजी कर करके, भाषणबाजी करते हैं ना, बहुत वाचा चलाते हैं और दुनिया तो यही समझती है पंडित सोई जो गल बजा, क्या समझती है नहीं? तो बस चीन के इलाके में और नेपाल और तिब्बत और यो जो जितने भी ऐसे इलाके हैं उत्तर साइड के, वहां उन्होंने जो ज्ञान सुनाया ना भाषणबाजी करके, तो बस ढेर सारे बौद्ध निकल।
तो उनको भी विदेशी कहेंगे कि नहीं? चलो विदेशी मत कहो।
फिर जब विदेशियों ने आक्रमण किए तो बौद्धियों ने हाथ उठाए दिए कि नहीं, हिंसा परमो धर्म
हो गई, अहिंसा परमो धर्म, अपने बीवी बाल बच्चों की सुरक्षा नहीं की, हाथ उठाए दिए, युद्ध किया नहीं है,
तो फिर वो तो हिंसक तो उठा ले जाएंगे ना, उनको उठा ले। अरे तुम अपने घर परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकते हो हैं? है तो तुम विश्व की सुरक्षा क्या करोगे हैं? विश्व में क्या तुम अहिंसा का पाठ पढ़ाई रहे, पढ़ाई लिया तुमने अहिंसा का पाठ? अहिंसा का पाठ तो भगवान जो इस सृष्टि पर एक ही बार आता है, ऐसे नहीं 20-20, 10-10, 24-24 अवतार लेकर के आता है, एक ही बार कलयुग के अंत में, और जब सत्युग का आदि होना बनाना होता है तब आता है और देवी देवताओं की अहिंसक दुनिया स्थापन करता है। वो देवी देवताएं सच्चे अर्थों में वेजिटेरियन थे, क्या वो कोई प्राणियों को काट पीट के नहीं खाते थे, वो कोई मछलियां नहीं खाते थे है? जैसे ये सतयुग से पहले कलयुग था ना, तो कलयुग में जो यूरोपवासी यादव थे ना, जिनके पेट में से मिसाइल से निकले थे मूसल, शास्त्रों में नाम उनका मूसल दे दिया, बुद्ध रूपी पेट से निकले थे। तो शास्त्रकारों ने समझ लिया पेट से निकले थे, तो वो वृष्णवंशी जो यादव थे ना, वो यादवों ने क्या किया था है? वो मिसाइल्स बनाए थे, बड़े हिंसक थे, हम सारी दुनिया को खत्म कर देंगे, ऐसे हिंसक। बताओ वो ही हिंसक जो हैं,
उन्होंने अपनी भाषा बनाई दी, द्वापर से द्वैतवादी युग आता है ना दैत्यों का,
तो वो अपनी भाषा चलाते हैं,
उन्होंने उसे पैराडाइज कहना शुरू कर दिया। किसको? जो भगवान ने हेवनली गॉड फादर ने दुनिया बनाई थी ना, उसको पैराडाइज कहना शुरू कर दिया। तो वो पैराडाइज में वास्तव में देवी देवताएं रहते थे जो सच्चे वेजिटेरियन थे। हाँ, और वो सतयुग में ही थे पक्के पक्के। तो उनको ये समझाया जाएगा कि उनको जो दुनिया भी वैष्णव बने पड़े हैं ना, विदेशों से यूरोप देशों से भी आकर के कोई क्रिश्चियंस हैं, वो वेजिटेरियन बन गए हैं, वैष्णव कहते हैं, हम वैष्णव पंथी हैं। तो उनको समझाया जाएगा कि जो विशेष सागर में नहीं गोते खाते हैं, क्या कौन से सागर में? विषय सागर, विषय ना, जिससे वैश्य पैदा होते हैं। क्या सतयुग में देवता, त्रेता में क्षत्रिय, और द्वैतवादी द्वापर युग में विषय विकार में जाने वाले वैश्य कहा जाता है। वो कर्मेंद्रियों को बहुत महत्व देते हैं, सबसे जास्ती महत्व देते हैं सुख लेने के लिए। कौन सी कर्मेंद्री को? कामेंद्रिय को। और सीखे कहां से? इब्राहिम ने आकर के सिखाया। क्या आज से 2500 वर्ष पहले ये जो देवताएं थे वो उन इब्राहिम के प्रभाव में आ गए, और प्रभाव में आकर के वो भी वही कर्म करने लगे। क्या कर्म करो और इंद्रियों के सुख भोग। पता है ये कर्म करना किसने सिखाया है? अरे कर्म करना ये रजोगुणी आत्माओं का काम है। हाँ, इसलिए उन रजोगुणी आत्माओं की जो रज धर्म होता है ना, वो ये आज के जो दुर्योधन दुस्साधन है उन्हें भी पता है। द्वापर युग से ये रजो धर्म शुरू हुआ। क्या ऐसा? कामांग से, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि शंकर जी को बहुत क्रोध आ गया तो उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। अब कामदेव कोई बाहर का कोई देवता थोड़ी होता है, वो तो अंदर की कमजोरी है इंद्रियों की है। वही शंकर वाली आत्मा जो आज पत्थर के रूप में पूजी जाती है शिव के मंदिरों में, वो पत्थर बुद्धि बन जाती है जन्म लेते लेते कलयुग के अंत में। तो वो पत्थर बुद्धि में वो शिव भगवान प्रवेश करती है। कौन सी आत्मा? शंकर वाली जो आत्मा थी है, जिसका नाम, जिसका शंकर का एक ही नाम है, जो निराकार शिव ज्योति के साथ जोड़ा जाता है। कहते हैं ना शिव शंकर भोले नाथ, कभी कहते हैं शिव विष्णु भोले नाथ, शिव ब्रह्मा भोले नाथ, कहते हैं नहीं, क्या कहते हैं? शिव शंकर। क्योंकि भारत में तो ये मान्यता है ना कि ऊंचे ऊंचे देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन उनमें जो ब्रह्मा था ना वो रजोगुणी था। रजोगुणी नाका का मतलब है भगवान ने जो ज्ञान सुनाया उसको वो ब्रह्मा पूरा समझ, अरे भाई पूरा समझ नहीं सका। न समझने के कारण क्या हुआ है? वो ब्रह्मा ने बस कर्म करना शुरू कर दिया। क्या क्या कर्म करना शुरू कर दिया? कर्म इंद्रियों से कर्म होते हैं ना, तो वो कर्म इंद्रियों से जो कर्म होते हैं, ज्ञान इंद्रियों की बात नहीं, कर्म इंद्रियों से जो कर्म होते हैं, भाग दौड़ करना, क्या ये प्रोजेक्टर शो बनाना, भाग दौड़ करो, प्रोजेक्टर दिखाओ, ये प्रदर्शनी करो, जड़ चित्रों की प्रदर्शनी, ये भाग दौड़ करो, ये मेला मला खड़ा करो, ढेर सारे स्टार लगाओ चित्रों के और उनमें मेले मला खड़े करो। क्या करो? समझा? ये योग शिविर बनाओ, ये कॉन्फ्रेंस करो। अरे भाई ये कॉन्फ्रेंस कहां से सीख ली ब्रह्मा वाली आत्मा ने? है? ये सारा 69 के बाद शुरू हुआ या पहले? और ये चित्र है जो जड़ चित्र हैं, 69 से पहले ही बनना शुरू हो गए थे या बाद में शुरू हुए? जाड़ का चित्र है, लक्ष्मी नारायण का चित्र है, त्रिमूर्ति का चित्र, गोले का चित्र नहीं कहा है। चल
तो
वो जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण उन्होंने जड़ चित्रों की प्रदर्शनी, मेले, मलाखड़े, कॉन्फ्रेंस करके वो अपना जो थोड़ा बहुत ज्ञान समझा वो सुनाना शुरू कर दिया। तो समझा ये जो रजोगुणी दुनिया की पैदाइश करने वाला कौन हुआ है? मूल कौन हुआ? ब्रह्मा। इसलिए उस ब्रह्मा ने सच्चे सच्चे ब्राह्मण भी पैदा किए हैं जो सूर्यवंशी कहे जाते थे, और चंद्रवंशी भी कहे जाते थे जो देवता बने, और फिर सत्युग त्रेता के जो रामकृष्ण जैसे देवताएं थे वो द्वापर युगी द्वैतवाद दैत्यों की दुनिया में द्वैतवाद आने से दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं है ना, हो गई ना। तो ये दो दो द्वैतवादी दुनिया में वो कर्म करना, कर्म इंद्रियों से किसको देख करके उन देवताई आत्माओं ने शुरू कर दिया, किससे प्रभावित हुए है? कैसे कन्वर्ट हो गए दूसरे धर्मों में? अरे भारतवासी ही कन्वर्ट होते हैं ना, कोई विदेशी धर्म वाले तो कन्वर्ट, वो तो बड़े पक्के होते हैं अपने धर्म के है? क्या जो पक्का मुसलमान होगा वो कभी भी अपनी कुरान को छोड़ करके दूसरे धर्म ग्रंथ को नहीं पकड़ेगा क्या? जो पक्का सिख होगा ना वो, फिर वो तो अपनी धर्म पुस्तक पकड़ेगा, गुरु ग्रंथ साहब। पक्का क्रिश्चियन होगा तो क्या करेगा? वो बाइबिल ही पकड़ेगा। हाँ हाँ, ये कच्चा अगर होगा तो फिर वो तो न बाइबिल को मानेगा, न गिरजाघर को मानेगा, न क्राइस्ट को मानेगा, मानेगा नहीं, वो तो नास्तिक हो गए, उनकी तो बात ही छोड़। तो ये जो जो क्रिश्चियंस है ना, जो कहते हैं पैराडाइज पैराडाइज पैराडाइज, वो पैराडाइज में सच्चे वैष्णव थे क्या? वो नहीं जो यूरोपीय क्रिश्चियंस आकर के भारत में क्या हरे राम, क्या हरे राम हरे कृष्ण एक संप्रदाय निकला ना। हाँ वो कहते हैं हम वैष्णव हैं, हाँ इस्कॉन वाले, हाँ इस्कॉन वाले जो अपना मंदिर वंदिर बनाते हैं, तो कहते हैं हम हैं इस कीचड़ की दुनिया में रहने वाले कमल के फूल समान अपने घर में रहते हैं, इसलिए हमने जो मंदिर बनाए हैं कमल के फूल के मंदिर बनाए ना। हाँ तो वो जो पैराडाइज में देवताएं थे ना, ये पक्का कर लो वो ही सच्चे देवताएं वैष्णव थे जो वेजिटेरियन थे हैं। अभी वो सनातन देवी देवता धर्म तो रहा नहीं, कहीं कहीं कोई परिवार भारत में आजकल भी मिल रहे हैं। ऐसे वो कौन सा स्टेट बताया भारत में जहां 100-150 के लोग एक ही बाप के परिवार में पल रहे, बाप भी जिंदा, बच्चे भी जिंदा, उनके बच्चे भी जिंदा। हाँ मिजोरम में, हाँ ठीक याद दिलाया। हाँ तो ये सनातन देवी देवता धर्म वाले जो थे उनका धर्म आज बिल्कुल प्राय लोप हो गया है। प्राय का मतलब बहुधा करके लोप हो गया, ओ थोड़ा सा कहीं, थोड़ा थोड़ा कहीं भारत में बहुत ढूंढेंगे तो ऐसे संगठित परिवार मिलेंगे जो माँ बाप को बहुत मान्यता देते हैं। क्या देवी देवताएं जो थे ना वो माता पिता को बहुत मान्यता देते थे, पिता को, माता को, और उसके बाप को भी, क्योंकि पहले तो पुराने जमाने में बाप भी जिंदा रहता था, बाप का बाप
दादे भी जिंदा रहता था और फिर परदादे भी जिंदा रहता, कभी कभी तरदादे भी जिंदा रहता था। तो वो जो देवी देवता सनातन धर्म वाले देवताएं थे, वो तरदादे को, परदादे को और दादे को ज्यादा मान्यता देने, वो बाप से भी ज्यादा मान्यता देते। क्यों? क्योंकि आज तक भारत में परंपरा चली आ रही है। क्या परंपरा चली आ रही है? कि बाप वर्षा दे या ना दे, लेकिन बाप को दादे परवादे की जो कमाई रखी हुई है, दादे परदादे तरदादे की कमाई की हुई रखी हुई है, वो जरूर देनी पड़ेगी बच्चे को।
क्या समझ में आया? तो ये परंपरा भारत में क्यों चल रही है?
ये परंपरा भगवान ने आकर के डाली थी।
क्या?
भगवान के बच्चे ब्राह्मण, ब्राह्मण बने सो विष्णु जैसे देवता बने, और विष्णु जैसे देवता के बच्चे 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण बने, जो बड़े होकर नाम पड़ता है लक्ष्मी नारायण।
क्या लक्ष्मी नारायण के मंदिर बड़े भव्य भव्य बनते ना
है? राधा कृष्ण तो बच्चे थे, राजा रानी तो नहीं थे।
जब बड़े हो गए तो फिर उन्होंने खूब अपना बढ़िया महल बना, उनको मिलेगा कि नहीं बनेगा?
हाँ, प्रकृति सारा सब कुछ उनको मुहैया करके देती है। तो वो देवी देवताएं, समझ में आ रहा है?
हाँ,
वो देवी देवताएं वैष्णव सच्चे थे, वो मांस मदिरा नहीं खाते थे, वो प्याज व्याज भी नहीं खाते,
और मछलियां भी
नहीं खाते।
हाँ, तो वो सत्युग में थे, तो उनको समझाया जाएगा
है? कि जो विषय सागर में गोते खाते हैं, समझा?
कब से?
2500 साल से, जब से ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए ना, देह अभिमानी सांडे।
क्या? कौन?
बड़ा देह भयान भरा हुआ है आत्मा, शुरुआत से लेके जब से इस दुनिया में आते हैं आत्मलोक से,
जिसे मुसलमान कहते हैं अर्श, अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम एबोड,
क्या कहते हैं?
हाँ, सोल वर्ल्ड।
हाँ, वहां से वो जो आत्माएं आती है ना, तो वो ये जानती ही नहीं कि सच्चे वैष्णव या सच्चे जो देवताएं थे वो भगवान ने बनाए थे। नरको नारायण जैसा देवता किसने बनाया? कौन सा भगवान? अरे दुनिया भर के सर्वव्यापी भगवान नहीं, कि राम भी भगवान, कि कृष्ण भी भगवान, अरे तो जो आया सो बंदर भी भगवान है, क्या क्या बनाई दिए,
सुअर भी भगवान,
अरे भगवान की तो दुर्गति कर दी। अरे भगवान इनको नहीं कहा जाता, भगवान तो वो है जो अकर्ता अभोक्ता अजन्मा है।
क्या?
वो गर्भ से कभी जन्म लेता ही नहीं है, आत्मा, लेकिन वो निराकार शिव है। कैसा है? शिव माने कल्याणकारी।
आज कल्याणकारी, कल कल्याणकारी, शंकर जी ऐसा कैसा
नहीं? वो तो ठीक है, पुरानी दुनिया का जब तक विनाश नहीं होगा, पुराना मकान तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक मकान नया बने, ये भी सृष्टि रूपी मकान है। तो शंकर जी जो है, जो शिव बाप का बड़ा बच्चा है, जिसे एक शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, आज परंपरा है ना दुनिया में।
क्या
क्या परंपरा है? के जो भारत में खास जो बड़ा बच्चा होता है ना, खास अपने नाम से आगे बाप का नाम जरूर लगा।
क्या?
हाँ, अगर कंपनी भी कोई बनाएंगे तो कहेंगे राम सन्स एंड कंपनी, है? बाप का नाम पहले और फिर सन्स, उनके बच्चे, उनकी कंपनी, बाप का नाम नहीं भूलते। ऐसे नहीं मुसलमानों की तरह औरंगजेब बन करके बाप को ही जेल में डाल दे।
क्या?
तो द्वैतवादी इन राक्षसों की हिंसक दुनिया में ये काम होते हैं।
क्या?
भारतवासी जो सच्चे वैष्णव थे, देवी देवताएं, वो ऐसे हिंसक काम नहीं करते, क्योंकि भगवान आकर के हिंसा सिखाता ही नहीं है। ये तो देहधारी मनुष्य गुरु हुए, ऋषि मुनि दाढ़ी मूछ वाले, काली दाढ़ी मूछ वाले, जैसे ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला, दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य होते हैं, भिखारी भिखारी कर्मेंद्रियों से कर्म वाले, कर्म करने वाले, या देवता होते हैं, वो तो भिखारी कर्म करने वाले मनुष्य ही होते हैं। मनुष्य उन्हें कहा जाता है जिनका मन चलायमान रहता है, चंचल होता है। तो ऐसी भी कोई दुनिया में आत्मा काम करने वाली है, पार्ट बजाने वाली है, जो कैसी है, इंद्रियों से भोग वासना नहीं लेती है, क्या भोग ही नहीं है, अभोक्ता है। कौन अभी बताए, शिव। क्या मतलब, कल्याणकारी, अल्पकाल का कल्याणकारी नहीं, क्या सदा काल का कल्याणकारी, इसलिए उनका नाम देते हैं सदा शिव। नाम देते ही नहीं, हाँ, तो वो सदा शिव इस सृष्टि पर भले आकर के कलयुग के अंत में और सत्युग के आदि में आकर के पार्ट बजाता है, फिर भी जैसे और धर्म पिताएं आते हैं ना इस दुनिया में, कितना टाइम पार्ट बजाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, ऐसे ही वो शिव इस सृष्टि पर आता है तो वो 100 साल पार्ट बजाता है, जिसे कहते हैं शूटिंग पीरियड वाला संगमयुग। ये दुनिया एक ड्रामा है ना, है ह्यूज ड्रामा, बेहद का ड्रामा, पता है कितने साल का, उन ऋषि मुनियों ने तो लाखों वर्ष की सृष्टि की आयु बता दी। वास्तव में सृष्टि की आयु लाखों वर्ष क्यों बता दी, बड़े चालाक थे, होशियार थे, चतुर सुदान। उन्होंने क्या किया, देखो अगर हम असली आयु बताएंगे सृष्टि की है, कि भाई इस नरक की दुनिया में जहाँ हिंसा होती है ना, हिंसक जानवरों की दुनिया है ना, है कांटों के जंगल की दुनिया, दुखदाइयों की दुनिया, तो इस दुनिया में अगर हम बताएंगे कि 2500 साल से ये विधर्मियों के आके चक्कर में हम पड़े हैं, तब से हमने शास्त्र लिखना शुरू किए, तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि देखो ये अंधेरे की जो दुनिया है ना, जिस अंधेरे की दुनिया में वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा वाली आत्मा अंधेरे में आ जाती है, आधे टाइम अंधेरे में और आधे टाइम उजाले में, तो उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष और हाँ बताओ, एक को कहते हैं कृष्ण पक्ष जहां चंद्रमा अंधेरे में आ जाता है, और एक को वो पक्ष कहते हैं जहां चंद्रमा उजाले में रहता है, शुक्ल पक्ष। जैसे ब्राह्मणों ने अपना नाम रख दिया कुरी का, कौन से ब्राह्मण है, हाँ हम शुक्ला जी हैं, शुक्ला बने एकदम सफेद शुक्ल, हाँ, तो वो शुक्ल पक्ष वाले जो थे ना, वो ही दुनिया देवताओं की दुनिया थी। ये ब्रह्मा जी महाराज जो है ना, यही चंद्रमा है, ये ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो है, ये ऐसे मन रूपी घोड़ा है, क्या के ये मन रूपी घोड़ा कंट्रोल में आना बड़ा मुश्किल, क्या दुनिया की 500-700 करोड़ आत्माएं है सब प्रयास करती है कि हमारा मन रूपी घोड़ा कंट्रोल में आ जाए, लेकिन वो जानती नहीं कि इस दुनिया में कौन सा मनुष्य है पुराने तो पुराना होगा ना, तो जन्म लेते जन्म भाई जन्म 84 के चक्कर में आते आज की दुनिया में भी होगा ना, ऐसे तो नहीं कि आदम आदि में ही था है? कहते ना बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो, तो पुराना आदमी था है? उसको ही नाम दिया है हिंदुओं ने आदिदेव, क्या और वो उन्होंने मुसलमानों ने नाम दिया आदम, देखो काम के आधार पर नाम में कैसी साम्यता है,
और अंग्रेजों ने नाम दिया उनकी जवान उतनी खुलती ना एडम,
एडम नाम दे दिया। और जो भारत में जैनी लोग है ना, उन्होंने नाम दिया आदिनाथ, आदिनाथ माने श्रेष्ठ आर्य, जिन्हें विदेशी इतिहासकारों ने कह दिया हमारे ग्रीस देश से आए थे आर्य। क्या?
अरे
आर्य माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ही का नाम है ऋषभ, ऋषभ देव माने श्रेष्ठ देव, उनसे श्रेष्ठ देवता कोई होता नहीं, वो ही आदि देव आदि नारायण। नारायण नाम के भी अनेक हुए ना, जैसे क्रिश्चियंस में अनेक हुए किंग एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही क्रिश्चियंस को फॉलो करने वाला जो देवता है, कहा ना एक देवता है जिसने द्वैतवादी द्वापर युग की रजो प्रधान दुनिया रचरा ली, कौन सा देवता? वो ही ऊंचे थे ऊंचे देवता जो माने जाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें ब्रह्मा देवता रजो प्रधान कर्म प्रधान, इसलिए जो वेद निकलते हैं वेदवाणी उसके मुख से, वो कर्मों को महत्व ज्यादा देते हैं। क्या ये नहीं जानते कि मनसा से भी कोई कर्म करना भगवान ने सिखाया, बुद्धि से? क्या मनसा ज्यादा पावरफुल होती है या ज्ञानेंद्रियां ज्यादा पावरफुल होती हैं या कर्मेंद्रियां ज्यादा पावरफुल होती हैं?
मनसा ज्यादा पावरफुल होती है।
मनसा अगर कंट्रोल कर ली तो फिर देवता कहा जाता है, वो देवता है आत्मिक स्थिति, ज्योति बिंदु आत्मा, मैं भ्रकुटी के मध्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, उस ज्योति बिंदु को सदैव देखते थे, वो देह को देखते देह की तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं थी। हाँ ज्ञान इंद्रियों में जरूर जाती थी, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां तो श्रेष्ठ इंद्रियां है ना, तो श्रेष्ठ इंद्रियों से वो संतान पैदा करते थे। जैसे आज की दुनिया में मोर का भी मिसाल है, मोरनी क्या करती है? मोरनी मोर के आंसू पी लेती है, बस उसी से ही गर्भ रह जाता है। हाँ तो देखो आज की दुनिया में मिसाल भी है उन देवी देवताओं की। तो बताया कि वो देवी देवताएं ज्ञान इंद्रियों से संतान पैदा करते थे, माने कैसी संतान? अव्यभिचारी बनकर के, माना जो 16 कला संपूर्ण राधा, 16 कला संपूर्ण कृष्ण, जो बड़े होके नारायण कहे जाते हैं, ऐसे राजा बनते हैं जिसे दुनिया में है, दुनिया में कोई भी नहीं जीत पाया। क्या शास्त्रों में लिखा हुआ है? एक नारायण ही हुआ है आदि नारायण, वो भी बाद वाला नारायण नहीं, बाद की पीढ़ियों का। एक आदि नारायण ही ऐसा हुआ है जिसको दुनिया में कभी भी हार नहीं खानी पड़ी, इसलिए उसकी यादगार में बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, भव्य मंदिर भारतवर्ष में बने हुए हैं, जाकर के देख सकते हैं कोई। ऐसी भव्यता जैसे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दिखाई जाती है, या वो जो स्वामी नारायण है, क्या वो नारायण का नाम स्वामी नारायण भी दिया, वो भी एक संप्रदाय निकल पड़ा। क्या उनके मंदिर देखो जाके अहमदाबाद में, क्या बढ़िया फर्स्ट क्लास मंदिर बनाया हुआ है, ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग में चमाचम आ गए। तो वो जो देवी देवताएं हैं ना, वो उनकी यादगारें हैं, अभी भक्त लोगों ने यादगारें बनाई हैं। वो कोई मंदिर में भगवान नहीं बैठा हुआ है, क्या चाहे वो शिव जी का मंदिर हो, उसमें तो कोई पत्थर का लिंग रखा हुआ है बड़ा वाला। अरे भगवान इतना बड़ा थोड़े ही होता है, जो असच्चा भगवान है ना, वो तो अकर्ता अभोक्ता ज्योति बिंदु है, बिंदु को तो कितना भी छोटा बनाते चले जाओ, बिंदु की लंबाई चौड़ाई आंकी जाएगी नहीं। वो शिव भगवान जो सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है, अरे भाई ध्यान से सुनो, सदा कल्याणकारी है वो, सदा कल्याणकारी भगवान तो कभी भी अकल्याणकारी नहीं होता। हाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो फिर उतर निकला के पैदा होंगे। तो भगवान का बड़ा बच्चा कौन है पता है? इस दुनिया में भगवान का बड़ा बच्चा, जिस बच्चे का नाम भगवान ने अपनी पूंछ में लटकाया हुआ है, कौन? एक शंकर जी महाराज। इसलिए शिव का लिंग ही पूजा जाता है या? और शंकर का विग्रह मूर्ति, शंकर मूर्तिमान है, अमूर्त नहीं है। शंकर की मूर्ति पूजी जाती है और शिव की लिंग।
अरे भाई शिव तो निराकार है, उसको लिंग कहां से आ गया?
उसको लिंग नहीं है, वो जिसे मैं प्रवेश करता है ना। अरे गीता में लिखा हुआ है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य भी हूं। अरे ये भूत प्रेत जिन्नात प्रवेश कर सकते हैं, तो क्या मैं प्रवेश नहीं कर सकता है? वो भी तो आत्माएं हैं ना, तो मैं भी प्रवेश करने योग्य हूं। मैं प्रवेश करता हूं है किसमें? ऐसे नहीं ऐरा गैरा नथु खैरा कोई मैं भी प्रवेश कर जाऊंगा। जैसे वो धर्म पिताएं होते हैं ना, तो ऐसे नहीं कि ऐरा गैरा नथु खैरा में कोई मैं प्रवेश करेंगे, नहीं। वो जो धर्म पिताएं होते हैं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जो नंबर वार आए ना इस सृष्टि पर, तो वो फर्स्ट क्लास देवताओं में ही प्रवेश करेंगे, नंबर वार देवताओं में प्रवेश करेंगे। तो जो सेकंड नंबर का नारायण बनता है सतयुग में, सेकंड कुरी का, सेकंड पीढ़ी का है ना, जरूर 15-16 कला वाला होगा। 15-16 कला माने, अरे चंद्रमा में कलाएं होती है ना, रोशनी। तो ज्ञान की रोशनी उसने पूरी धारण नहीं की होगी क्या? वाह बस हो, अपनी नशे में आ गए। क्या नशे में आ गए? मैं ब्रह्मा बाबा की गद्दी लूंगी। वो आत्मा नशे में आ गई, मैं गद्दी नशीन बन। ये गद्दी का नशा जो है ना बड़ा खराब। ये गद्दी के नशे में राजाओं ने आकर के दर पीढ़ी सारी हालत खराब कर ली, अत्याचारी राजाएं बन गए हैं। और आज देखो अल्पकाल के लिए बैठते हैं गद्दी पर, राष्ट्रपति बन के प्रधानमंत्री बन के बैठते हैं, कितना नशा। अरे बाप रे, वो नशे में आकर के जैसे शराब का नशा शराबी को होता है ना, वो भूल जाते हैं क्या कि हम कहां जा रहे हैं और कहां हम भाषण दे रहे हैं है? ब्रह्मा कुमारियों में जाएंगे भाषण देके चले आए। आज की दुनिया में हमने कहीं भी ऐसी संस्था नहीं देखी जिस संस्था में दो फाड़े न हुए हों। ऐसी बड़ी श्रेष्ठ अच्छी संस्था है, सालों साल से चल रही है हैं? लेकिन इसमें दो फाड़े नहीं, इस्लामियों में, बौद्धियों में, क्रिश्चियंस में हैं, मुसलमानों में, सब में दो दो फाड़े होते गए, दो से चार, चार से आठ, संप्रदाय के संप्रदाय निकलते गए। एक ब्रह्मा कुमारी हमने, अरे मूलमती कुर्सी की नशे में आके तुमको कितना नशा कर गया। वहां लड्डू पेड़ा खाने को मिल गए हैं, अच्छी सी गद्दी तुम्हें बैठने को मिल गई, मान मर्तबा दे दिया, तो बस नशा चढ़ गया कि नहीं? हाँ, नशे में ऐसे धुत हो जाते हैं कि हम क्या बोल के आ गए ध्यान ही नहीं देते। तो ये जो नशा है ना, क्या कुर्सी का नशा, अरे तुम्हें सजा थोड़े ही मिली, वहां बैठो उतर गई नहीं उतर गई। अरे ठीक है, तो वो जो कुर्सी का नशा है ना, वो इस दुनिया में सबको चढ़ता है, चढ़ता है कि नहीं? हाँ, तो कोई भी कुर्सी मिले काम धंधे की है, अपनी कुर्सी के नशे में नहीं आना चाहिए। हा तो बताया प्रभुता पाए काहे मदनाही, बड़ा अच्छा फिक्र है, याद किया, लिख के अच्छे अच्छे से याद करो, सबको सुनाओ, बढ़िया बढ़िया फिक्रे हैं क्या।
याद कर लिया? हाँ, क्या सुनाओ? सुनाओगे नहीं, लिखोगे? प्रभु, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्रभुता पाए काहे मदन आए, के ही जगह जाए न व्यापी माया। ये प्रभुता, ये गद्दी बड़ी सत्यानाशी है। तो बताया कि ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने ना, उनमें कोई ऐसे निकले जिन्होंने ये पक्का कर लिया बा ब्रह्मा की गद्दी तो हम ही लेंगे। जैसे सरस्वती महारानी थी ना, वो ब्रह्मा के साथ बैठती थी। क्या? तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि हाँ, सची देवी को जैसी कुर्सी स्वर्ग में मिलती थी, ऐसी कुर्सी और किसी देवी देवता को नहीं मिलती। क्या? तो सच्ची बात है कि नहीं है? हाँ, तो वो जो ब्रह्मा कुमार कुमारी है उनमें भी कोई निकल पड़ी, अरे वो जगदम्बा सरस्वती की कुर्सी तो हम ही लेंगे, दूसरा कोई को हम नहीं लेने देंगे, देखें कोई कैसे लेता है। है? हाँ। दिमाग में बात आ जाती है ना कि सरस्वती महारानी तो मर गई है, अब मर गई तो वो तो मर गई, वो स्वर्ग में कैसी आएंगी, हम लेंगे कुर्सी। तो जटा से कुर्सी पे बैठना शुरू कर दिया और आंखों में आंखें डाल करके राजयोग सिखाना शुरू कर दिया। अरे भगवान, इसको राजयोग कहते हैं? ऐरा गैरा नथु खैरा, कोई भी आकर के आंखों में आंखें लड़ाएगा, संग का रंग लेगा और देगा तो वो देवता बन जाएगा, राजयोग सीख के। अरे भगवान ने जो राजयोग सिखाया वो कोई नैन कटारी चलाना नहीं सिखाया था। भगवान तो ऊंचते ऊंचे है, उसकी दृष्टि भी ऊंचते ऊंचे है। भगवान जिसमें प्रवेश करता है वो भले आखिरी जन्म में जन्म लेते लेते क्या बन जाता, पत्थर बुद्धि बन जाता है। उसकी यादगार लिंग के रूप में पूजी जा रही है, लोग नहीं जानते हैं तो कह देते हैं शिव शंकर एक ही है। अरे शिव शंकर एक कैसे है? सोमनाथ के मंदिर में जाके देखते, हिस्ट्री तो बनी हुई है। सोमनाथ के मंदिर में वो लिंग लाल पत्थर का था, जो पत्थर बुद्धि बनने की यादगार है, उस आत्मा की यादगार, वही शंकर वाली आत्मा, विग्रह वाली, मूर्तिमान, शरीर धारण करने वाली। ये शरीर मूर्ति है ना, चैतन्य है या जड़ है? जड़ है, इसमें आत्मा चैतन्य है। तो उस चैतन्य आत्मा की यादगार उसमें सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग में हीरा दिखाई गई। वो हीरा पत्थर का ही था या कोई कोई निराकार था? है? पत्थर का ही था। तो लोगों को ये पता नहीं है कि भगवान निराकार, अभोक्ता, अकर्ता, अजन्मा, वो ज्योति बिंदु, ज्योति है, जिसकी यादगार है बारह ज्योतिर्लिंगम। क्या? सिर्फ लिंगम नहीं कहते बारह को, क्या कहते? ज्योति के लिंग। वो शिव भगवान इस सृष्टि पर आकर के वो ही शंकर वाली आत्मा जो अंतिम जन्म में आदम अर्जुन है बनती है ना, उसमें रथ में, उसके शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं और उसकी इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल। कौन से इंद्रिय रूपी घोड़ों को? भ्रष्ट इंद्रिय रूपी घोड़ों को नहीं, हाँ, ज्ञान इंद्रिय रूपी घोड़ों को भी नहीं उतना कंट्रोल करते। खास कंट्रोल करते हैं मन को। क्या? और सबका मन एक जैसा होता है क्या? कि मन भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास होता होगा? है? हाँ। तो ब्रह्मा के चार मुख बहुत प्रसिद्ध हैं। मुख हैं तो कोई आदमी होंगे ना, है? ऐसा कोई आदमी देखा आज की दुनिया में जिसको चार मुख हो? ऐसा कोई मुख आदमी देखा? शास्त्रकारों ने जो दिखाई दिया अंधश्रद्धा के दस मुख वाला रावण था, दशानन, छह मुख वाला खरानन था, कार्तिकेय, कितनी बेवकूफी बनाई थी। अरे समझो तो, मुख है तो जरूर उसका धड़ भी तो होगा, शरीर भी तो होगा। तो वो चार ब्रह्मा हुए क्या? नीची कोटि के चार ब्रह्मा। हाँ,
क्योंकि ब्रह्मा को वास्तव में पांच मुख भी दिखाए जाते हैं। क्या जो पांच मुख है वो ऊर्ध्वमुखी होता है, ऊपर की ओर मुख करने वाला, तो वो तो सबका मुखिया हो गया है ना। तो जो चार नीचे वाले मुख हैं वो ही हैं चार घोड़े। कौन से चार घोड़े? जो अर्जुन के रथ में ब्रह्मा के रूप में दिखाए गए हैं, सफेद घोड़े। क्या ऐसी आत्मा नहीं है जो काले कर्म करने वाली हो अंतिम जन्म में? कैसे काले कर्म? बंगियों जैसे, शूद्रों जैसे, कि ना अम्मा को देखेंगे, ना बहन को देखेंगे, ना बेटी को देखेंगे, बस काम इंद्रिय का आवेग आया अपने धंधा शुरू कर देंगे। उनको कहा जाता है शूद्र, क्षुद्र। क्षुद्र शब्द से बन गया शूद्र। वो आत्माएं जो है अंतिम जन्म में भी, कौन से कुल में जन्म होता है उनका? ब्राह्मण कुल में। चारों ही ब्राह्मण पक्के, पांचवा तो पक्का होगा ही होगा ब्राह्मण कुल में। क्या ऐरा वैरा नथु पैरा ब्राह्मणों में थोड़े ही शिव प्रवेश करता है? शिव तो ब्राह्मण चोटी में प्रवेश करता है। क्या जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी दिखाई जाती है यादगार, पता है? यादगार चोटी ऐसी ऊंची चोटी कि सारी दुनिया जलमय में प्रलय काल में डूब जाती है और वो एवरेस्ट चोटी नहीं डूबती। सारी दुनिया जब बाढ़ आती है ना तो उसमें देह अभिमान की मिट्टी मिली हुई होती है, तो सारी दुनिया देह अभिमान की मिट्टी में बहती है, डूबती है, खलास हो जाती है। बस वो एक ही आत्मा है जो हिमगिर के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। अरे सब मर गए, क्या कोई भी नहीं बचा? वो ही शास्त्रों में दिखाते हैं कि अगर मूर्तिमान कोई मनुष्य है इस संसार में, कोई देवता है, तो एक ही देवता है जिसका कोई माँ बाप नहीं होता और वो कभी मरता नहीं, उसको अमरनाथ बोला है। क्या अमर है कि मरने वाला है? नहीं, अमरनाथ। वो अमरनाथ जो है वो शंकर ही है, एक ही नामधारी शंकरो, दुनिया में शांति पैदा कर देता है। कैसे शांति पैदा कर देता है? अरे ब्रह्मा ने कौन सी दुनिया रचाई? ब्रह्मा ने जो दुनिया रचाई वो वेदों में दुनिया बोल रही है। वेदों में शब्द हैं, स्वाहा स्वाहा चिल्लाते जाते हैं, ये नहीं जानते स्व किसको कहा जाता है। अरे भाई स्व आत्मा को कहा जाता है, जो मन बुद्धि स्वरूप आत्मा है ना, हाँ, उस मन को स्वाहा करो, जला दो। जैसे कामदेव को शास्त्रों में दिखाया गया जला दिया, उसकी यादगार है जो गीता में बताई गई। क्या अश्वत्थ वृक्ष, अश्व माने घोड़ा, मन रूपी घोड़ा, इत्थ स्थिर कर दिया जाए। तो मन रूपी जो घोड़े हैं ना ये चार, ये चारों ही स्थिर कर दिए। किसने कर दिए? जो ब्रह्मा का ऊपर वाला ऊर्ध्वमुखी मुख कहा जाता है, हाँ, उसने ऐसा पुरुषार्थ किया है, ऐसा शिव का सुनाया हुआ ज्ञान सुना कि इस सच रूपी रंगमंच पर उन चार गुणों को पहले पहले स्थिर कर दिया। तो उनसे जो दुनिया बनती है चार युगों वाली बनी ना, है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये जो दुनिया है इस दुनिया का नाम अश्वत्थ वृक्ष रखा गया है। अब वृक्ष है तो ऐसे ही थोड़े ही कि कोई आधार मूर्त जड़ें ही होंगी, तना ही होगा, डालियां ही होगी, या दाई ओर की डालियां होंगी या बाई ओर की डालियां होंगी, बामांगी, बाएं हाथ से गंदा गर्म किया जाता है ना, तो बाई ओर के जो अपवित्रता को धारण करने वाले विदेशी धर्म हैं, क्या भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करने कराने वाले, वो ही डालियां नहीं है उस वृक्ष में भारतीय। हाँ, संन्यास धर्म की डालियां भी हैं, क्या भारतीय बौद्ध धर्म की डालियां भी हैं, जो ब्रह्मचर्य को महत्व देते जरूर है। हाँ, देते कि नहीं देते? हाँ, तो ऐसे धर्म जो भारतीय हैं, विदेशी हैं, वो धर्म की डालियां इस अध्यक्ष वृक्ष में लटकती हुई दिखाई जाती है। क्या जो परमधाम है, ब्रह्मलोक है, वहां तो वो ये वृक्ष उल्टा दिखाया हुआ है। क्या उल्टा इसलिए दिखाया है कि वो डालियां नीचे की ओर जो स्वदेशी धर्म की और विदेशी धर्म की हैं, और उनकी जड़ें, हाँ, वाम मार्ग की जड़ें और दाई ओर की जड़ें वो ऊपर की ओर। वो कौन सी जड़ें हैं मालूम है? हाँ, सुविरूढ़ अमूलम गीता में कहा है, गहरी जड़ें जमी हुई। अरे हाँ, तो वो गहरी जो जड़ें जमी हुई है ना, वो जड़ें वास्तव में वो ही सतयुग के नारायण हैं, आठ पीढ़ियों के, जिनमें पहला नारायण बनता है सतयुग का, सोलह कला संपूर्ण। हाँ, वो ब्रह्मा दादा लेखराज, उसके मुख से भगवान आकर के ओरली वाणी सुनाते हैं। ऐसे कि नहीं कोई शास्त्र लिखे हैं, क्या वेद लिखे हैं, नहीं, धर्म पिताओं ने आकर के ओरली सुनाया, या कोई बाइबल कुरान लिखी है, लिखा धम्मपद, नहीं, गुरु ग्रंथ साहब लिखा था गुरु नानक ने, नहीं, मुख से ओरली सुनाया था ना। ऐसे नहीं जैसे गीता बना के रख दी है मनुष्य गुरुओं ने और उसमें नाम डाल दिया कृष्ण का नाम, और कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई, राजयोग सिखाया और राजयोग सिखा के नर को नारायण बनाया। अरे नर तो कलाहीन और नारायण सोलह कला संपूर्ण, सतयुग में दिखाते हैं सोलह कला संपूर्ण नारायण। अरे उन्हें ये भी पता नहीं है भगवान ने जो नारायण बनाया था वो तो कलातीत नारायण बनाया था, क्या विष्णु बनाया था, बहुत श्रेष्ठ स्टेज है वो है। कौन सी श्रेष्ठ स्टेज? जब भगवान आते हैं ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, तो जो ब्राह्मण उच्च कोटि के सूर्यवंशी ब्राह्मण बनते हैं, सूर्यवंशी ब्राह्मण बनते हैं, वो सूर्यवंशी ब्राह्मण सच्चे सच्चे विष्णुवंशी देवताएं वैकुंठ में बनते हैं। वैकुंठ अलग चीज और स्वर्ग अलग चीज। वैकुंठ माने विष्णु लोक। हा देखो विष्णु की कैसी अच्छी स्टेज दिखाते हैं, खुशनुमा चेहरा दिखाते हैं, हैं? क्या बढ़िया आकर्षण। तो वो समझने की बातें हैं, क्या वो सारी बातें समझने के बगैर ऐसे ही भगवान ने जो वाणी सुनाई ना ब्रह्मा के मुख से है? सुन लिया, जैसे भक्ति मार्ग में शास्त्रों को सुनते हैं, गुरु जी महाराज, सन्यासी जी महाराज, पंडित जी महाराज सुनाते हैं, और बाहर जाके जाड़ दिया, दुनिया के धंधा दौरी में लग गए। बता, ऐसे शास्त्र सुनने से कोई फायदा हुआ? कुछ नहीं फायदा। शास्त्र सुनने से फायदा उनको होगा जिनका धंधा ही बन जाए कि भगवान ने जो ऊंचे ऊंचे शास्त्र सुनाया, जिसे हम कहते हैं गीता, ज्ञान का गीत गाया है, वो ज्ञान का गीत तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का जो आदि स्वरूप था, ओम मंडली, कौन सी मंडली, असली त्रिदेवों की, जिसमें आ माने फर्स्ट क्लास ब्रह्मा था, ये सेकंड क्लास, फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास नहीं, फिफ्थ क्लास, फर्स्ट क्लास ब्रह्मा, जिसको कहते हैं आज भी गाते हैं शास्त्रों में, गाते तो हैं, क्या क्या गाते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, परम माने बड़ा ब्रह्म, महत ब्रह्म गीता में बोला है, क्या क्या बोला गीता में, महत ब्रह्म, बड़ा अम्मा, अम्मा में सहनशीलता का गुण होता है ना, दुनिया की अम्माओं में देख लो नंबर बार है कि नहीं सहनशीलता का गुण, तो वो महत ब्रह्म है, कैसे बनता है, अरे भगवान जब आते हैं तो जिस तन के द्वारा वो गीता ज्ञान सुनाते हैं, जो यज्ञ के आदि में ओम मंडली में गीता ज्ञान सुनाया था, गीता का सही रहस्य सुनाया था, क्या असली, जो वेदों में और जो महाभारत में जो गीता है वो तो बाद में ऐड की गई है, सबसे पहले जो शास्त्र बना है वो तो वास्तव में गीता है, और ये वेद तो बाद में बने हैं, ये वेद जो हैं, ओ ये रजोगुणी, रजोगुणी दुनिया को बनाने वाले ज्ञान सुनाते हैं, वास्तव में ये रजोगुणी ब्रह्मा है, जिसके मुख से ये जो वाणी निकल रही है, जो वेद वाणी कही जाती है, इसके लिए गीता में कहा है त्रैगुण्य विषया वेदा नित्रैगुण्यो भव अर्जुन, क्या ये जो वेद है ना, ये तीन गुणों से भरे पूरे हैं, हे अर्जुन तू तो वो ही आत्मा है, शंकर वाली आत्मा है, जिसके मस्तक पर वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा हनुमान के रूप में है कपित ध्वज बैठा हुआ दिखाया जाता है, क्या हनुमान के, हनुमान की बुद्धि कैसी होती है, बंदर जैसी होती है, कैसी होती है, हाँ बड़ा बंदर है कि नहीं, हाँ तो वो बड़ा बंदर जो है, जो गीता ज्ञान सुनने वाला अर्जुन है ना, उसके ऊपर बैठा हुआ, तो शास्त्रकारों ने दिखाई दिया है कि जहां जहां राम कथा होती है, किसकी कथा, राम, अरे राम की कथा तो असली राम ही सुनाएगा ना, तो वो राम वाली आत्मा है, क्या जो अर्जुन का रथ दिखाया गया है, पहला ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा, समझे, हाँ जो संपन्न पुरुषार्थी बनने पर असली विष्णु बनती है, कैसा असली विष्णु, वो चार भुजाएं नहीं विष्णु की, अरे भुजाएं तो कंट्रोल्ड होने वाली हैं, या भुजाओं को भी कोई कंट्रोल करने वाला ऊपर रहता है, हाँ वो है असली आत्मा, क्या जो बाप समान शिव ज्योति, अरे और खड़े ही हो जाओ, शिव ज्योति बिंदु समान आत्मा बनती है, क्या माने शिव जो है वो इस सृष्टि पर नहीं पूजा लेता, पूजा लेने और पूजा करने वालों को भगत कहा जाएगा या ज्ञानी कहा जाएगा, क्या कहेंगे, है अंधश्रद्धालु भगत, और भगतों की दुनिया में आजकल के जो भक्तों ने, ऋषि मुनियों ने भी तो भगत ही हुए ना, उन्होंने क्या किया, भक्ति बड़ी चीज है, क्या बहुत भक्ति करो, भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा, ये तो बात ठीक है, जन्म जन्मांतर से जिन्होंने आधा कल्प 2500 साल से, जब से ये ऋषि मुनि और ये द्वैतवादी धर्म पिताएं आए हैं द्वापर युग से, तो इन्होंने आकर के ये भक्ति करना सिखाया, क्या पहले पहले राजा विक्रमादित्य को भक्ति करना सिखाया, क्या सिखाया, उनको बताया शिवलिंग बनाओ और उसमें बड़ा भव्य मंदिर बनाओ, है उस भव्य मंदिर में ढेर सारी धन संपत्ति इकट्ठी की, राजा ने इकट्ठी की तो प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा ने भी इकट्ठी, द्वापर युग में इकट्ठी करते करते जब कलयुग आया आज से 1200 साल पहले, तो फिर बहुत धन संपत्ति इकट्ठी हो गई थी सोमनाथ मंदिर में।
तो क्या उस समय ये जो इस्लामियों की औलाद बने के मुसलमान मोहम्मद से जो पैदा हुए, वो मुसलमानों ने आकर के खूब लूटा।
लूटा कि नहीं, एक बार लूटा कि बार बार लूटा?
बार बार लूटा,
क्योंकि एक बार लूट के ले जाते रहे और उनके हवाई जहाज,
क्या हवाई जहाज तो थे ही नहीं उस समय, अरे ये तो गत बोल दिया। हाँ क्या, हाँ वो नाव है, नवैया बड़ी बड़ी बनाते थे, उन्हें भर भर के ले जाते थे,
उनके पास ले जाने का साधन ही इतना, ऊंटों में कहां तक भरेंगे, हाथियों में कहां तक भरेंगे, तो ले गए एक बार ले गए, देखा अभी तो बहुत रह गया है, फिर दूसरी बार आक्रमण किया। तो ऐसा भव्य सोमनाथ मंदिर,
लेकिन वो कोई भगवान बेटा था?
अरे भगवान तो अजन्मा है, वो इस सृष्टि पर जन्म ही नहीं लेता।
क्या,
इस सृष्टि पर आता जरूर है लेकिन हाँ मनुष्य तन में प्रवेश करता है।
कौन से मनुष्य तन में?
जो इस सृष्टि का पुराने से पुराना बाद आदम का जमाना कहा जाता है,
वो आदम,
वो अर्जुन, जो ज्ञान धन अर्जुन करने वाला है।
क्या
भगवान ने जो ज्ञान सुनाया वो तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान होगा ना, उत्तम से उत्तम। उस उत्तम ज्ञान को उस अर्जुन ने इतना धारण किया कि वो जन्म जन्मांतर राजयोग सीख करके राजा बनता है। ये राजाई की पढ़ाई अर्जुन ही जानता है कि वो उस निराकार अकाल मूर्त के सिवाय और कोई ये राजा बनाने की राजयोग की पढ़ाई दुनिया में ना आज तक किसी ने पढ़ाई है न पढ़ा सकेगा, क्योंकि दुनिया में सब आधीन बनाने वाले हैं।
क्या वो सतयुग का 16 गला संपूर्ण नारायण ही क्यों न हो, जिसको भगवान समझ लिया है, 10-10 अवतार, 24-24 अवतार, 22-22 अवतार दिखाई दिए। क्या
वो भी आधीन बनाने वाला है?
है कौन सी आत्मा?
वो ही ब्रह्मा वाली आत्मा।
कौन सा ब्रह्मा?
दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा, जिससे नौकुरी के ब्राह्मण पैदा होते हैं।
है तो उनमें कोई ब्राह्मण चोटी भी होगा पहले नंबर का?
अरे भाई होगा या नहीं होगा? हाँ तो जो पहले नंबर का चोटी का ब्राह्मण है वही शंकर वाली आत्मा है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, न कोई देवता का जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवता है, एक का भी नाम नहीं जोड़ा जाता, न कोई दैत्य का नाम जोड़ा जाता, चाहे वो राजा बलि ही क्यों ना हो, प्रहलाद ही वाली आत्मा क्यों,
किसी का नाम नहीं, कोई मनुष्य का नाम जोड़ नहीं जोड़ा जाता।
क्या कोई प्राणी मात्र का नाम नहीं जोड़ा जाता?
किसका नाम जोड़ा जाता?
एक ही नाम, शिव शंकर भोलेनाथ, और उसकी यादगार भी आजकल चली आ रही है भारतवर्ष में, खास जो सनातन धर्म को फिर भी कुछ न कुछ मान्यता देने वाले हैं शास्त्रों के आधार पर, वो अपने नाम से पहले अपने बाप का नाम आज भी लगाते हैं। दक्षिण भारत में तो खास लगाते हैं कि नहीं?
हाँ
देखो भगवान ने जो आके सच्ची सच्ची एंडरसन कंपनी, हाँ ये भी कंपनी का नाम रखते हैं। तो भगवान ने आके जो अच्छी अच्छी परंपराएं डाली, क्या कि माता पिता की जो बनाई हुई दुनिया है ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, लेकिन दुनिया जानती नहीं कि शिव जो है इस सृष्टि पर जो जिसमें प्रवेश करता है, वो प्रवेश की हुई जो आत्मा है जिसमें, उसमें दो आत्माएं खास विशेष पार्ट बजाने वाली है, एक जिसमें प्रवेश करता है जिसका शरीर है मूर्ति है शंकर की, और एक वो ही निराकार शिव,
क्या
जिसकी मूर्ति कभी होती ही नहीं इस दुनिया, वो जन्म ही नहीं लेता। तो वो जो शिव है वो इस सृष्टि पर नहीं रहता, तो फिर उसकी मूर्ति कैसे बनेगी? तो वो जिसमें प्रवेश करता है, और जो प्रवेश किया हुआ अर्जुन जिसे शरीरधारी है, वो सबसे ज्यादा ज्ञान धन का अर्जन करने वाला अर्जुन बनता है, अर्जुन कहा जाता है शास्त्रों में, वो अर्जुन, क्योंकि शास्त्रों में जितने भी नाम हैं, वो सारे ही नाम काम के आधार पर नाम हैं, तो अर्जुन नाम कैसे पड़ा? उसने जरूर भगवान जो ऊंचते ऊंचे है आत्मा, उसने जो ज्ञान दिया ऊंचते ऊंच, अखूट ज्ञान का भंडार है उसके पास, है कि नहीं? शास्त्रों में लिखा भी है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम् यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, बोला कि नहीं? तो ऐसी पूर्ण आत्मा, क्या परम पिता परम आत्मा जिसे कहा जाता है शिव है, सदा शिव, ऐसे नहीं कि पुरुषोत्तम संगम युग में कलयुग के अंत और सत्युग के आदि के समय में जब नई दुनिया हेविन बनानी होती है, जन्नत बनानी होती है, तब आकर के वो शरीर धारण करके पार्ट बजाए, और फिर उसी तरह सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में भी पार्ट बजाए, नहीं वो तो आती नहीं है वहां, क्या वहां तो गर्भ से जन्म लेना पड़े, वो तो अगर्भा है, या? वो जिसमें प्रवेश करता है सच्चे सोने जैसी आत्मा में, उसका नाम शास्त्र में दिया है हिरण्य गर्भ, हिरण्य माने सोना, गर्भ माने वो सोने का गर्भ है माता का, जिसका नाम रखा परम ब्रह्म, क्योंकि शिव जब आते हैं तो पुरुष तन में आएंगे या स्त्री चोले में आएंगे, घड़ी घड़ी महीने महीने गंदा होता रहता है, किस में आएंगे? है? हाँ, एक अक्षर लिख दिया कर पुरुष तन में आएंगे ना, हाँ क्योंकि नारी तन में आ रहे हैं, हाँ? और ब्रह्मा के रूप में वेदवाणी सुना रहे, हाँ? और दादा लिंगराज ब्रह्मा गोदी में बिठा रहे, क्या बिठा रहे कि बिठाते थे कि नहीं बिठाते थे? तो क्या स्त्री चोला जो है जिसमें शिव भगवान प्रवेश करे तो दूषित नहीं हो जाएगा? है? हाँ दूषित हो जाएगा, तो स्त्री चोले में प्रवेश नहीं करते हैं। और फिर वो निराकार शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो वो तो आप समान जिस विग्रह को शिव समान बनाते हैं, शंकर को जिसको मिला करके एक बनाई दिया शिव शंकर भोलेनाथ, तो वो शंकर की आत्मा की यादगार भी मंदिरों में कैसे बनेगी, जो दिखाई है नीचे है ऊंचते ऊंच माता षष्ठी रूपी रंगमंच की, कैसी ऊंचते ऊंच, जो जन्म जन्मांतर क्या शरीर तो धारण करती है लेकिन एक आत्मा के सिवाय कभी दूसरी आत्मा के शरीर का आधार लेकर पति नहीं बनाती, समझा? ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, उसका नाम पड़ता है पार्वती, उसकी ये प्रतिज्ञा रहती है हर जन्म में, क्या पक्की प्रतिज्ञा, वरों शंभु नतु रहों कुमारी, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, शंभु माने जो स्वयं भू, भू माने पैदा होता है, कोई पैदा नहीं करता है, तो पहला पहला स्वयं भू तो शिव हुआ, स्वयं ही आकर सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होता है ना, होता ही नहीं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म है वो जन्म नहीं जो गंदगी से निकलता है गर्भ से, भगवान तो अगर्भा है, क्या गर्भ से जन्म नहीं लेता, तो वो शिव भगवान अब्बलंबर का अगर्भा है, क्या अकर्ता अभोक्ता अजन्म। अब सवाल ये है कि वो इस सृष्टि पर आता है तो आप समान किसी को बनाएगा नहीं तो फिर उसकी पूजा कैसे होगी मंदिरों में, आप समान की ही तो पूजा होनी चाहिए ना, कि नीचा हो तो पूजा होनी चाहिए नहीं, तो वो जो जिसकी पूजा होती है आज भारतवर्ष में खास गांव गांव में, शहर शहर में और विदेशों में भी जो खुदाइयां हुई हैं, उनमें वो लिंग मूर्तियां मिली है सबसे जास्ती तादाद में। माने सार्वभौम आत्मा है भूमि में, सब जगह मान्यता प्राप्त। कैसे? जब इस सृष्टि का महाविनाश होता है, प्रलय होती है कलयुग के अंत में, तो कल्पांत काल में सारी दुनिया की मनुष्य मात्र की आत्माएं 500, 700, 750 करोड़ सब उस भगवान को पहचानती है, निराकार को। क्या? हाँ। और विदेशी आत्माएं जल्दी पहचानेंगी कि स्वदेशी जल्दी पहचानेंगी? लिख के बताओ, एक अक्षर बताओ, सु या वी। हाँ, क्यों विदेशी पहले पहचानेंगे? क्यों पहले पहचानेंगे? कारण, क्योंकि वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाद में आई हुई आत्माएं हैं, जो डायरेक्ट कहां से आती हैं? आत्मलोक से, अर्श से। कहां से आती हैं? हाँ, उस दुनिया से आते हैं जिसे कहते हैं सोल वर्ल्ड, सुप्रीम एबोड। तो सब तो प्रधान आत्मा होंगी ना? हाँ, उन देवी देवताओं के मुकाबले सात्विक बुद्धि होती है, अंधश्रद्धा वाली बुद्धि नहीं कि 10 सिर रावण के होते हैं और 5 सिर ब्रह्मा जी को होते हैं और 5 सिर शंकर जी को होते हैं। अरे क्या चक्करवाली दिखाई दी, ये तो सिर तो दिखाए हैं समझाने के लिए, बाकी ऐसे नहीं कोई 5 सिर वाला या 4 सिर वाला या 6 सिर वाला या 10 सिर वाला कोई मनुष्य होता होगा दुनिया में, नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता है। अगर होता होता तो उसकी वंशावली में भी एक आध पैदा होना चाहिए ना, कहीं देखा नहीं होता। लेकिन ये देवी देवताओं की आत्माएं बहुत पुरानी हैं, जन्म लेते लेते इनकी बुद्धि पत्थरे आ जाती है, है? तो बुद्धि जो है पत्थर बुद्धि जैसी हो जाए। उनमें अव्वल नंबर पत्थर बुद्धि कौन से देवता की? जो बड़े से बड़ा देवता कहा महादेव, नाम क्या रखा? महादेव। अब वो महादेव जी महाराजा जी यही भूल गए कि हम महादेव थे, क्या भूल गए कि नहीं? हाँ, वो भूल गए, वो घड़ी घड़ी अपन को समझ, मैं महादेव अभी आत्मा हूँ, लड्डू तुम हो महात्मा। अरे वो शिव ही तुम्हारे अंदर आकर के महात्मा, वो क्या नाम, क्या वो महादेव का पार्ट बजाती है, वो शिव ही चारों ब्रह्मा के अंदर बड़े से बड़ी सृष्टि की अम्मा का पार्ट बजा के दिखाती है सहनशीलता का। नहीं तो आज के तमो प्रधान मनुष्य ये ऐसी सहनशीलता धारण कर सकते हैं? नहीं धारण कर सकते। वही आत्मा है, है? जिस मनुष्य तन में प्रवेश करती है उसको ऐसा बनाती है जो सच्ची रूपी रंगमंच पर प्रधान बन जाता है, सत्व गुण का भी प्रधान, रजोगुण का भी प्रधान। क्या? रजोगुण किसको दिखाया जाता है? रजोगुण की यादगार है बैल, जिसको नाम दिया है ब्रखब। क्या? ढेर सारी गायों के झुंड के बीच में रहता है एक बैल और बच्चे पैदा करता है कि नहीं है, है ना? तो सबसे ज्यादा वीरवान कौन हुआ? वो बैल ही हुआ, तो उसको बैल के रूप में दिखाया। बैल कौन हुआ? वो ही बैल बुद्धि जो अपन को थोड़ा सा ज्ञान मिलता है और समझ के बैठ जाता है संक्षेत्र से, क्या मैं महादेव हूं, तुम कहां से लड्डू बन जाओगे महादेव? अभी तो छोटे छोटे देवताएं भी बनने हैं, है? नारायण है जिसकी पूजा होती है घर घर में, है? लव कृष्ण के रूप में ज्यादा ढेर सारे मंदिर बने हुए हैं। तो वास्तव में ये देवताएं जो हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं अंतिम जन्म में, जो नई नई आत्माएं द्वापर कलयुग में उतरी हैं वो फिर भी सात्विक होती है। और फिर सबसे लास्ट मुख्य धर्म है क्रिश्चियन धर्म। क्या क्रिश्चियन जानते हैं इस बात को? क्योंकि ज्यादा सत्व प्रधान है ना बुद्धि उनकी चारों धर्मों में। अरे देवी देवता सनातन धर्म का मुखिया महादेव योगीश्वर, शास्त्रकारों ने लिख दिया योगीश्वर, सनत कुमार भी योगीश्वर। अरे दो दो योगीश्वर कहां से हो जाएंगे, उधर फिर कृष्ण को भी योगी राज दिखाई दिया। अरे योगियों का राजा एक होगा सारी दुनिया में कि तीन तीन होंगे, दो दो होंगे, नहीं एक ही। तो एक ही वास्तव में शंकर वाली आत्मा देव देव महादेव जो कही जाती है, वो ही देवताओं का सबसे पुराना था पुराना देवता बनता है, मनुष्य से देवता आदिनारायण विष्णु। तो वो पुरानी आत्मा है ना, जन्म लेते लेते क्या शरीर का जन्म लेते लेते पार्ट तो ऊंचा बजाया जन्म जन्मांतर, अंतिम जन्म में भी ऊंचा पार्ट बजाता है या नीचा बजाता है, अंतिम जन्म में भी शरीर से ऊंचाई पार्ट बजाता है, भले कोई पहचाने या न पहचाने। इतना तक होता है कि 84 जन्मों में वो आत्मा ऊंची स्टेज का जो पार्ट बजाती है वो गुप्त रह करके अपने को गुप्त रख के पार्ट बजाती है कि प्रत्यक्ष होके पार्ट बजाती है। कहते हैं थोथा चना बाजे गना, कहते हैं ना आधा जल गगरी छलकती जाए, आधी भरी हुई गगरिया होगी ना कलश तो ज्यादा छलकेगा है। तो ऐसे ही है दुनिया की ये जो क्षुद्र आत्माएं है ना, ऐसे दुनिया में बाद में आती हैं, वो अपने को बहुत प्रत्यक्ष करती है, दिखावा बहुत करती है। अरे हम बड़े श्रेष्ठ हैं लड्डू, तुम कहां से श्रेष्ठ हो जाओगे है, तुम बाद में उतरी हुई आत्मा है इस सृष्टि पर। श्रेष्ठ तो वो हैं जिनका तुम आधार लेते हो, तुम्हारे बाप क्राइस्ट ने जीसस का आधार लिया ना, क्रिश्चियन इस बात को जानते हैं। क्या जानते हैं कि क्राइस्ट जो था वो नाम बाद में पड़ा, पहले उसका नाम जीसस था, जीसस में प्रवेश किया। क्राइस्ट तो सत्वप्रधान आत्मा थी, सात्विक आत्मा गर्भ से जन्म नहीं ले सकती, लेडी गर्भ में पकना पड़ता है ना, अंदर जैसे जेल हो गई, 9 महीने जेल में पड़े रहो है? आत्मा त्राहि त्राहि करती है बाहर आने के लिए, तो वो आत्मा जेल ही बनेगी जो सत्यधाम से आएगी सुप्रीम कोर्ट से, नहीं वो आत्मा जो अर्श से उतरती है डायरेक्ट, क्राइस्ट की आत्मा हो, इब्राहिम की आत्मा हो, महात्मा बुद्ध की आत्मा हो, वो पहले प्रवेश करती है। महात्मा बुद्ध ने उनका नाम पहले सिद्धार्थ था जिस शरीर में प्रवेश किया, बुद्ध नाम तो नहीं था। जब प्रवेश किया तो उस आत्मा ने जो करिश्मा दिखाया नहीं आत्मा ने, तो महात्मा बुद्ध ना पड़ा। ऐसे ही जीसस में प्रवेश किया तो उसका नाम क्राइस्ट पड़ा। तो ये जो बाद में उतरे हुए हैं ना बुद्ध और क्राइस्ट, ये फिर भी जानते हैं क्रिश्चियंस, क्योंकि नई हिस्ट्री है ना, तो वो जानते हैं कि हाँ भाई जीसस नाम का कोई पहले का कोई धर्म था, उसमें प्रवेश किया। अब ये नहीं जानते कि वो कोई देवता धर्म की आत्मा है, कौन जीसस। हाँ तो शिव आकर के प्रवेश करता है और प्रवेश करके वो अर्जुन को ज्ञान धन का अर्जन कराता है, जिस ऊंचते ऊंच ज्ञान धन का खूट ज्ञान धन का अर्जन करने से अर्जुन जन्म जन्मांतर का राजयोग सीख करके बड़े से बड़ा राजा बनता है अंतिम जन्मों तक। इसलिए ब्रह्मा मुख से शिव बाप ने बोला कि कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो 82-83 जन्म तक भी राजा ही का सुख भोगते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, क्योंकि मैं ही आकर के राजा बनाता हूँ राजयोग सिखा करके। ओम शांति।